जी से भी हम आपको थोड़ा सा परिचित करा देंगे कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये जो संस्था है ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1936 में हैदराबाद सिंध में इसकी स्थापना हुई थी और उसी स्थापना के समय से ही दादी जी इस यज्ञ में शामिल हुए, इसलिए हम कहते हैं दादी जी जो है हमारी आदि रतन है कि आदि से लेकर आज तक यज्ञ के साथ साथ दादी जी चल रहे हैं। उस समय दादियों की बहुत आयु, जैसे आपने हिस्ट्री हॉल में फोटोज देखे होंगे, सभी नन्ही नन्ही बालिकाएं हैं,
यंग फोटो देखे दादी 9 साल के थे
तो बहुत छोटी सी उम्र में जिन्होंने दुनिया का रंग जिनको लगाई नहीं तो पूरा ही अध्यात्म के रंग में रंगे हुए हैं। परमात्मा ने जिन ज्ञान रत्नों से आपकी पालना की उन ज्ञान रत्नों को जीवन में ऐसा उतारा कि उन्हीं ज्ञान रत्नों के द्वारा उस परमात्मा का मन मोह लिया, जिस कारण से आपको नाम मिला दादी रतन मोहिनी जी। और न सिर्फ परमात्मा का मन मोहा है आपने, लेकिन दुनिया की हर वो आत्मा जो दादी के सानिध्य में आती है वो भी उनका भी मन मोह लेती है। और दादियों के मन में हमेशा आप देख रहे कितनी एज हो गई है, लेकिन इतनी एज में भी अथक होकर दादियां सेवा में, दादी का एज 90 प्लस
91 यंग
तो
हम बताती
उल्टा 90 के बदले 90 निकाल दी,
90
हम बताती नहीं
तो इतनी उम्र में भी अथक होकर दादियों की हमेशा ये शुभकामना रहती है।
वो ही मानते हैं जब हम बाबा के बने हैं, इसलिए दुनिया के एज को याद करके क्या करें।
तो आज दिन तक भी अथक होकर सेवा में है कि यही एक शुभ भावना है, दुनिया की हर आत्मा को उसकी खुद की पहचान मिले और उस पिता परमात्मा से मिलकर अपना ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें। तो दादी जी इस यज्ञ में जुड़े आदि से ही, और अभी दादी यहाँ पर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से भिन्न भिन्न झोन बनाए गए हैं, तो दादी जी राजस्थान झोन की डायरेक्टर हैं और इस कैंपस की भी डायरेक्टर हैं। हाँ, जितने बड़े दादी जी उतनी बड़ी उनकी जिम्मेवारियां भी हैं, तो इस कैंपस के भी डायरेक्टर हैं, राजस्थान झोन के भी डायरेक्टर हैं, और हमारे जैसे जितनी भी कुमारियां यहाँ समर्पित होती हैं और जीवन सेवा में लगाती उन सब की भी डायरेक्टर आप हैं। साथ ही साथ हमारे पास जो यूथ विंग है उसकी भी आप चेयरपर्सन हैं। बहुत सारी जिम्मेवारियां कंधों पे लेकर फिर भी आप देखेंगे दादियां कितनी हल्की रहती है, कितनी निश्चिंत निर्मल, यही हमें दादियों से सीखना है। तो मैं दादी की और अधिक महिमा न करते हुए यही चाहूंगी कि आप स्वयं दादी के मुखारविंद से जो सुनेंगे अनुभव करेंगे दादी कैसे अध्यात्म में रंगी हुई परमात्मा की एक अनमोल हस्ती है। दादी जी से अभी हम आशीर्वचन सुनेंगे और अपनी बुद्धि रूपी झोली को भरपूर करेंगे। आदरणीय रत्नमणि दादी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब हम यह ओम शांति महावाक्य कहते हैं, कहने का भाव यही है कि यह ओम शांति महावाक्य वैसे भी भक्ति मार्ग में ओम शांति माना जाता है, परंतु हम इस ओम शांति का अर्थ ओम अर्थात मैं कौन मैं शुद्ध आत्मा हमेशा हम याद रखें, क्योंकि आत्मा हमेशा शुद्ध है माना जाता है ना। भले हमें अभी नॉलेज है कि कर्मों का खाता आत्मा ही शरीर के द्वारा कर्म कराती है, और अगर आत्मा ही कर्म कराती है तो जो कराता है उसके ऊपर भी तो उन कर्मों का दोष माना जाएगा ना। वास्तव में मनुष्य तो मानते हैं आत्मा निर्लेप है, ऐसा माना जाता है ना, ऐसा माना जाता है कि आत्मा निर्लेप है। यह नॉलेज हमें सर्वशक्तिवान भगवान ने दी है कि वास्तव में आत्मा और परमात्मा इनका अर्थ इसका वास्तव में अर्थ परमात्मा ऊंची से ऊंची आत्मा जो कभी शरीर नहीं लेती, और आत्मा जो शरीर धारण करती है। तो शरीर तो कर्मेंद्रिय वाला है ना, जो भी हम कर्म करते हैं इन कर्म इंद्रियों से करते हैं, पर करते तब है जब इन कर्म इंद्रियों के अंदर आत्मा विराजमान है। अगर आत्मा विराजमान न होती तो शरीर कुछ कर सकता? तो वास्तव में शरीर तो पांच तत्वों का बना हुआ है, पर शरीर के अंदर जो आत्मा है चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो हमें ये सोचना है वास्तव में मैं कौन, कौन मैं चैतन्य शक्ति या मैं पांच तत्वों वाला पुतला? तो चैतन्य शक्ति आत्मा शुद्ध है, परंतु शरीर का आधार लिया है। तो जो कर्म शरीर के द्वारा कराती है, कराती तो आत्मा है ना, क्योंकि आत्मा नहीं होती तो शरीर कुछ कर सकता? तो अगर शरीर के द्वारा करती है तो उसके ऊपर भी तो कर्मों का दोष कहेंगे, परंतु सिर्फ दोष कर्मों का नहीं, कर्म कराने वाले का। तो कराने वाली कौन हुई? अगर ये बात हमें समझ में आ जाती है तो हम बड़ा सहज रीति से अपने को बुरे कर्मों से दूर कर सकते हैं। भले हर एक चाहता है हमारे से कोई बुरा कर्म न हो, अच्छे बुरे को सब समझते हैं, समझ करके नहीं भी करना चाहते या बुरा फिर भी होता है। क्यों? क्योंकि जिसका किया हुआ है भोगना तो उसको पड़ेगा। अगर आत्मा शरीर में न होती तो भोगना तो रही हो सकती, शरीर तो रही भोगेगा। समझ रहे हैं ना बात? समझ में आती है ना? तो कितनी वास्तव में कितनी सहज बात है। तो इसी सहज बात को बाबा ने हम बच्चों को समझा दिया, और हम शुरू में जो भी आए तो सब कोमल ही थे, छोटे ही थे, तो इस बात को जल्दी समझ गए। और समझने के कारण जब बात समझ में आ जाती है तो हम स्वयं को उन बातों से संभाल सकते हैं। तो हम अपने को कर्मों से में सावधान रह करके जो अच्छे कर्म है, जब हम सब समझते हैं कोई के प्रति बुरा सोचना नहीं चाहिए, मानते हैं ना? परंतु जब किसको कहो भाई तुम क्यों इसके लिए बोलते हो तो क्या कहेंगे? अगर आपके लिए आपको कहा जाए तो आप बताओ क्या कहेंगे? ये ऐसा करता है, समझता ही नहीं है, तो मुझे कहना तो पड़ेगा, ये जवाब मिलेगा ना? परंतु वास्तव में हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं ये तो हम समझ रहे हैं ना, हमने भी तो कुछ कर्म किए हैं ना। कर्म हर एक करता है, हर एक कर्म करने वाले से अच्छा बुरा दोनों ही होता है। पर जब मेरे हाथों द्वारा कोई भी ऐसा कर्म हुआ है, अगर मैंने उसको स्वीकार किया तो उसमें क्या बुरी बात है। और ये भी तो हमें समझ है, अगर हम अपनी भूल को स्वीकार करते हैं तो हम स्वयं को उस भूल करने से बचा भी सकते, क्योंकि आत्मा के अंदर अर्थात मेरे अंदर यह तो शक्ति है समझना, क्या करना है क्या नहीं करना है ये समझ तो है ना हमारे पास, है ना, है ना, समझ रहे हैं ना?
हाँ या ना बोलो।
जब हम समझ रहे हैं कर सकते हैं, फिर भी हम दूसरे को दोष देते हैं, भले समझते हैं इसने किया है तब किया है, पर हम ये भी तो समझते हैं ना, उसका भी अपना जैसा स्वभाव है वैसा करेंगे, चलो उसमें शक्ति नहीं है जो अपने स्वभाव को कंट्रोल कर सकते, पर अब मुझे जब बाबा ने समझ दी है तो मैं तो अपने अंदर उस शक्ति को जागृत कर सकती हूँ ना, क्योंकि बाबा की नॉलेज इतनी ऊंची है और बाप हमारा ऊंचे ते ऊंचा है। जब ऊंचे ते ऊंचे भगवान ने हम मानते हैं, ऊंचे ते ऊंचे भगवान ने हमें ये ऊंचे ते ऊंची नॉलेज दी है, अगर सचमुच हम इस बात को मानते हैं तो हमारा फर्ज बनता है हम अपनी भूल को समझ करके उसको स्वीकार करें। स्वीकार करना माना हमारे से वो भूल छूट जाएंगी, बल्कि जिसको मेरी भूल महसूस हुई उसको भी मेरे पर तरस पड़ेगा और ही मेरे से प्यार होगा। चाहे आप करके देखो अनुभव, हम लोगों ने तो किया है ये अनुभव, क्योंकि हमें शुरू से ये नॉलेज मिली और उसी नॉलेज को हमने, क्योंकि संगठन में रहते थे आपस में चर्चाएं करते रहते थे, जो सुना उसकी फिर आपस में चर्चा करते थे, चर्चा करके उस बात को स्पष्ट करते थे और आपस में ये निर्णय करते थे इस बात को हमें ऐसा पक्का करना है, और एक दो को कहते थे क्योंकि नवल थे तो एक दो में विश्वास था, तो एक दो को कहते तुम कभी भी मेरी भूल देखो ना तो मुझे तुम खुशी से कहना, भले उसको जिसको संकोच भी होता था तुम कहते तुम संकोच नहीं करना हमें बोल देना हम उसको मान लेंगे, तो वो भी खुश हो जाते थे और उस खुशी के मारे उसको अपने आप अपनी बात समझ में आती थी मेरी भूल होती है या नहीं, तो हमें उसको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी कि भाई ये तुमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसा हो जाता था वो खुद ही जो भी कुछ करता था ना वो खुद आके बताता था दादी आज मेरे से ये भूल हो गई, तो हमें भी कहने की जरूरत नहीं पड़े कि भाई तुमने ये भूल क्यों की, ये कहने की जरूरत नहीं। तो जब हम एक दो के प्रति ऐसी भावना रखते हैं तो स्वाभाविक है दूसरे को भी मेरे प्रति ऐसी भावना रहेंगी, क्योंकि कहा जाता है जैसा कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे, तो हम लोग एक दो को ये पक्का कराते थे याद रखो तुम अभी हम अभी बाबा के साथ रहते हैं जिससे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे, क्योंकि वो हमारे पीछे आए हैं, इसलिए हम लोगों को बड़ा सावधान। तो ऐसे फिर हम एक दो को सावधान करके अर्थात एक दो के प्रति शुभ चिंतक बन के, क्योंकि हम उसकी बात को हम ऐसे नहीं समझते ये भूल करते हैं, समझते हैं ना, इतने जन्मों के संस्कार हैं जल्दी तो किसके बदल नहीं सकते हैं, बचपन से अगर माँ बाप अच्छा सिखाते हैं जिसको जो सिखाते हैं, और आजकल की दुनिया तो कैसी है माँ बाप का सुनते हैं बच्चे, आजकल के बच्चे तो ये है, हमारे दिनों के बच्चे तो वो थे जो माँ बाप ने कहा वैसा ही किया। अभी के बच्चे और उस समय के बच्चों में भी फर्क है, तो ये बात भी हम जानते हैं ना कि अभी की दुनिया कैसी है और वो क्या करते हैं। तो उसमें हमें, हम हमेशा ये मानती है कोई भी बात है, हमें स्वयं स्वयं को समझाना, नॉलेज बाबा ने दी है। जैसे पढ़ाई में नॉलेज तो टीचर पढ़ाती है, स्टडी हम करते हैं, पक्का स्वयं को करना पड़ता है। जब हम पक्का करते हैं तो कैसा भी क्वेश्चन आता है लेकिन उसको समझ करके मुझे जवाब देना। इसी प्रकार से अब नॉलेज हम लोगों को मिल चुकी है, जब मिल चुकी है और अभी हमें समझ में आती है, क्योंकि अभी का फिर समय वो है। इस समय को हम संगम कहते हैं, संगम जहां दो का मेल होता है। जैसे नदी सागर का होता है तो संगम बोलते हैं, ऐसे इस समय को है कलयुग। आम रीति से हम कलयुग बोलते हैं ना, कलयुग है सत्ययुग है, सत्ययुग तो कोई नहीं कहेगा, कलयुग ही है ना। और बल्कि कहते हैं अभी तो घोर कलयुग, कहने में भी कहेंगे घोर कलयुग, ऐसे होता है ना। तो समझते हैं घोर कलयुग माना, कोई भी अपनी भूल जल्दी नहीं मानेगा, हर एक अपने को राइट मानेगा। परंतु हमें तो अभी समझ है ना राइट रॉन्ग, और ये भी समझ है अनेक जन्मों के कर्मों के संस्कार है। तो अनेक जन्मों के संस्कार, एक जन्म और अभी का एक जन्म भी किसको पता तो रे कितना है। चलो
चलाओ तो मोबाइल का बजा,
ये मोबाइल बजा। मैंने समझा क्योंकि हमारा है ना दिनचर्या में घंटे घंटे में, शुरू में हमने जब ये याद का शुरू किया था ना तो ये नियम बनाया था बाबा ने, घंटे घंटे जनरल रिकॉर्ड बनता था जो सब जो जहां है जैसे है साइलेंट। तो हम क्या बात कर रही थी,
भूल स्वीकार करना,
मतलब जो भी अपनी भूल है, अभी तो हम सबको नॉलेज है और हर एक दुनिया में भी हर एक समझदार है, क्या अच्छा है क्या बुरा है सब समझते हैं, करना चाहिए न करना चाहिए ये भी समझते हैं। परंतु थोड़ा ये है, ये जब ऐसा करता है नहीं समझता है तो हमें समझाना तो पड़ेगा ना। परंतु उसको समझाने से हमें जोश आ जाता है, उसको समझाने से हम उसको ही गुस्सा करते हैं तो उससे वो समझेगा क्या,
तो गुस्सा आ जाता है ना दादी।
तो आपके तरफ से ये बताती
दादी, ये सब हमारे साथ में आखा दी दीदी के साथ निकालना है ना, तो इनकी तरफ से बोलना पड़ेगा।
ठीक है, अभी तो आप भी समझ गए हैं। वैसे भी कहा जाता है भाई जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के और करेंगे, भले हम कहेंगे हमको देख के थोड़े ही करेंगे, वो तो जो करेगा वो पाएगा, ऐसे भी जवाब दे।
सबका कहना ऐसा होता है बार बार समझाने के बाद भी नहीं सुनता और उसी से कारोबार करना है 24 घंटा, तो फिर क्या करे, चिड़चिड़ापन आ जाता है।
तो उसको हम समझे कि वो नहीं समझता है, उसको हम किस प्रकार से ये कौन सा ऐसा काम दे जो वो खुशी से करे। एक तो बार उसको खुश करके फिर उसको हम समझाने की कोशिश करें, करते करते तो मनुष्य समझ जाता है ना, वो भी रहते रहते समझ तो जाएंगे ना, आखिर हम जाएंगे कहाँ। जब हम आ गए रहे इतना समय रहे, अच्छा समझो हम उसको कहती है तुम निकल जाओ घर जाओ, चलो समझो घर भी चली जाती है, दुखी तो खुद होंगी ना। जब दुखी होंगे तो कहाँ जाएंगे, भले शर्म की मारी नहीं आएंगी पर आखिर तरस तो हमें ही खाना है, क्योंकि बाबा ने नॉलेज हमको दिया।
वो कहते नॉलेज वो भी तो ले रहे हैं ना,
नॉलेज ले रहे हैं, स्वभाव को नहीं बदलते हैं तो नॉलेज का फायदा क्या।
नंबर वार
तो तुमको नंबर वार चलना है तो फिर ठीक है।
मैं तो सबकी तरफ से बोल रही हूँ
ठीक है। मैं कहती हूँ मैं भी जो तुम सबके तरफ से बोलती हो मैं उनको जवाब दे रही हूँ। ठीक है, तुम अपनी भूल को समझते भी हो और ऐसे ही चलने चाहते हो तो हम भी समझ लेती है, मुझे आपको कहना नहीं है। फिर तो हम भी कहेंगे भाई हर एक के अपने अपने कर्म हैं, फिर कर्मों से सुख या दुख वो भी तो फिर खुद को ही भोगना पड़ेगा, फिर हम उस बात को सुनेंगे नहीं। माना हमें भी तो हर एक से सीखना पड़ता है ना, भले हम कितना भी समझदार हो, हम तो सदा समझते हैं, छोटे छोटे बच्चों से भी सीखना होता है। देखो छोटे बच्चों का स्वभाव अच्छा होता है, कितने प्यारे लगते हैं, क्यों छोटा बच्चा प्यारा लगता है, सबके साथ हंसता है, जो भी गोद में लेगा चला जाएगा। छोटा बच्चा तो सबके साथ हंसता रहेगा, जो भी उसको प्यार से गोद में लेगा ले लेगा। तो हम भी ऐसे छोटे बच्चे बन जाए अपने पुराने स्वभाव को पुराना समझ करके, बाबा ने हमें नई जीवन दी, नया नॉलेज दिया है। जब ये नॉलेज हमको अच्छी लगती है, अच्छी लगना माना उसको अपने में धारण कर, तब तो कहेंगे हमको अच्छी लगी है। अच्छी लगती है तो हमें भी अच्छा बनना है ना, अच्छा बनना है माना उस बात को समझ करके हमें स्वयं को ऐसा बनाना, करना तो हमको ही है ना, कर्म हम करती है, समझ मेरे पास है, मेरे लिए और नहीं, और के पास समझ नहीं है, भले हो भी उसको स्वीकार भी तो मैं ही करूंगी ना। अगर ये दो तीन छोटी छोटी बातें हम अपने से बात करके अपन को समझा दें तो हमें वास्तव में और किसके समझाने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ जो भगवानों वाचा हम सुनते हैं उस पर हम ध्यान दें और उसको हम आपस में थोड़ा रिवाइज करते रहे, क्योंकि नहीं तो हम आपस में क्या बातें करेंगे, कुछ तो करेंगे ना,
व्यर्थ करेंगे।
तो ये अगर हम अपने पास लक्ष्य रखते हैं कि हम आपस में, समझो सारे दिन में, ऐसे तो नहीं है कि हम सारा दिन काम में बिजी रहते हैं, आजकल तो हर एक के घर में सर्वेंट वगैरह होते ही है, पर सर्वेंट को भी हम तो समझते हैं सर्वेंट समझ के नहीं चलाना चाहिए, हम तो सर्वेंट को भी अपने भाई समझ के चलते हैं। और आप लोग को पता है हम कोई पे पर सर्वेंट तो रखते ही नहीं है, अपने ही भाई बहने मिलकर के, चाहे किचन का काम है, चाहे सफाई है, चाहे घर की सफाई है, बल्कि आप विश्वास करेंगे हम खुद भी अपने कमरे की सफाई करते रहते थे और हमें उसमें ऑब्जेक्शन नहीं होता था। अपना घर है, अपने घर में अपनी सफाई करते हैं, अपनी हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अगर हम नहीं करेंगे तो हमको देख के और भी नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख के और करेंगे। तो नॉलेज तो अब तो समझो नॉलेज है सारी, तो जब हमको नॉलेज है तो अभी सिर्फ थोड़ा हमको अपने कर्मों पर और आपस में एक दो को, चलो कभी भी किससे भूल होती है, भूल तो कभी ना कभी होती ही है, हर एक तो सदा प्रवीण नहीं है ना, अपन भी थोड़ी सभी बातों को जानते हैं, दुनिया में चलते हैं, कई बातें हम नहीं जानते हैं, एक दूसरे सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, तो इसका मतलब थोड़ा ही हम कोई के बात को वजन ही नहीं देंगे। इसलिए हम हर एक में अपनी अपनी खूबियां होती हैं, हर एक में समझे, हर एक अपनी खूबियों में समझदार है। अगर हमको उसकी बात अच्छी लगती है हम उसको स्वीकार करके मान करके चले, अगर समझो हमको नहीं समझ में आती है तो कम से कम जवाब तो न दे, डिसरिगार्ड तो न करे। अगर हम डिसरिगार्ड देंगे तो वो मेरा ही कर्म बनेगा, उससे मैं ही दुखी होंगी, वो नहीं दुखी होगा, दुखी मैं ही होंगी, गालियां वो ही देगा ना मुझे, तो दुखी मैं होंगी या वो। अगर हम कोई भी बात को जो समझ है हमारे पास उस समझ को अपने से यूज करते रहेंगे तो हम सदा स्वयं को सावधानी से चला सकेंगे। बाकी तो आज के दुनिया में कोई कौन है जो नहीं समझता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए, सब समझते हैं। ऐसा कोई नहीं जो कोई बुरे काम को अच्छा काम समझ के और कर पाए। अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करता है वो अलग बात है, पर ये भी तो समझता है मैं अपने स्वार्थ के लिए करता हूं, ये भी समझता है। लेकिन हमें सच्चाई से चलना है क्योंकि हमें अभी कर्मों की गति का ज्ञान है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा मेरा खाता तो बनेगा ही, और जो खाता बनेगा क्योंकि ये माना गया है मनुष्य आत्मा जैसा कर्म करती है उसको ऐसा ही जन्म मिलता है, ऐसे घर में जन्म मिलता है, ऐसा संग मिलता है। तो हम ऐसा कर्म क्यों करें? अगर किसके साथ मैंने दुश्मनी रखी है और उससे दुश्मन समझ करके मैं वैर लेती रहती हूं तो दूसरे जन्म में मेरा क्या हाल होगा? अगर ये सोचूं तो मैं भी बच जाऊं और मेरे से ऐसा कर्म भी ना हो। तो उस केवल जो हमारे पास समझ है उस समझ को हम सही रूप से फिर से अपने को याद दिलाते और अपने कर्मों में सुधार लाते रहें। बाकी तो हर एक चाहता है आपस में हमारा स्नेह बना रहे। देखो लौकिक संबंध को अपना समझते हैं, घर में रहते अपने बड़ों को बड़ा समझते हैं तो रिगार्ड से बात करते हैं ना, उनकी बात को मानते हैं ना, नहीं मानेंगे तो चुप रहेंगे, ऐसे भी तो होते हैं ना। तो ये तो एक नियम है, समझ है, और ये समझ मनुष्य को बड़ा समझदार माना है क्योंकि मन और बुद्धि ये दोनों मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ है। जब ये श्रेष्ठ वस्तु मेरे पास है अर्थात भगवान ने मुझे मनुष्य रूप का जन्म दिया है तो मुझ आत्मा के अंदर सच क्या झूठ क्या अच्छा क्या बुरा क्या ये समझने की शक्ति है। जब बाबा ने हमें शक्ति दी है, भगवान ने हमें शक्ति दी है, तो हम उस शक्ति को सच्चाई से अपने जीवन में यूज करें चलाए तो हम इस जीवन में भी सुखी रहेंगे और आगे की भी हमारी जीवन अच्छी बनेगी। है वास्तव में इतनी समझ, और ये समझ सबके पास है। देखो कितनी सहज बात है, सुन रहे हो तो क्या लगता है ये तो समझ में आ ही जाती है, समझी हुई है। लेकिन जो समझते हैं उस रीति स्वयं को करने की शक्ति जागृत करें, तो ये शक्ति अभी हमारे अंदर तब जागृत होती है जब जो सुनते हैं उन बातों को हम अंदर मनन करते हैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई का एग्जाम के दिनों में क्यों हम उसको फिर पढ़ते हैं, क्यों याद रखते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो हम उसका यथार्थ जो है लिखकर जो उसकी समझानी है वो ही हम जवाब दें, ऐसे करते हैं ना, तो फिर उसको रिवाइज करके अपने को पक्का कराते हैं। पढ़ाई का ये नियम है, इसलिए बाबा ने इसका नाम ही रखा है ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो हम अगर ये भी याद रखें हम ईश्वरी विद्यालय के स्टूडेंट हैं, कितने भी बड़े हैं पर ईश्वरी विद्यालय के तो स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट का काम जो पढ़ाई पढ़ते हैं उस पढ़ाई पर ध्यान दें, पढ़ाई का कभी न कभी एग्जाम तो होगा ही, और ये भी हमें पता है किस रूप में किस किस रूप में हमारा एग्जाम होता है। ये सब हम आपस में जो भी करते हैं जो भी बोलते हैं, मानो अगर हम समझे हम एग्जामिनेशन हॉल में हैं तो हम कितने सावधान होके चलेंगे। शुरू शुरू में हम अपन को ऐसे समझते इसलिए स्वयं पर सावधान रहते। सार तो यही है, क्यों कभी विस्तार तो बहुत आप लोगों ने भी अगर आते रहते होंगे कभी कभी तो सुनते रहते होंगे, लेकिन जिस बातों को हम अपने में दोहराते रहें, जब हमें ये बातें अच्छी लगती हैं तो अच्छा लगना माना उसको अभी जाएंगे शॉपिंग पर जो चीज अच्छी लगेगी खरीद करके आएंगे ना, चाहे उसका कितना भी दाम देना पड़े। होता है ना ऐसा, होता है ऐसा, होता है माताएं, साधारण सी बात, अभी तो समझना बड़ा सहज है, शुरू में तो फिर भी मुश्किल लगता था, अभी तो ऐसा लगता है ये तो साधारण जीवन की बात नहीं है। अगर इसको सहज करके हम समझते चले और जो समझ में यथार्थ आता है वो ही करते चले तो हम बड़ा जल्दी स्वयं को स्वयं सुधार सकते हैं। और ये नॉलेज ही है, स्वयं को पहचानो, स्वयं को यथार्थ रूप से जानो और जानकर समझ करके ऐसे कर्म करो, फिर जैसे कर्म वैसा ही उसका फल, और उसी फल के अनुसार हमारा ऐसा जन्म। और अभी तो बाबा ने हमें क्या बताया है, अभी का भविष्य क्या है, आप पुराने हैं ना अभी का भविष्य क्या है, दुनिया का रंग क्या दिखाता है,
फरिश्ता देवता बने।
अभी का भविष्य
फरिश्ता को
दुनिया का रंग तो दिखाता है, एक तरफ साइंस के साधन अच्छे बढ़ते जा रहे हैं, सुविधाएं रहने की बहुत अच्छी मिलती जा रही है, और दूसरे तरफ दूसरे तरफ लड़ाई झगड़े भी बहुत होते रहते हैं
के
तो आप जानते हैं तो बोलते हैं, परंतु अगर मतलब अभी कलयुग तो हर एक मानता है और ये भी सब जानते हैं सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, और कलयुग के बाद सत्युग तो आएगा ही, कैसे आएगा, कलयुग भी हम लोगों ने ही बनाया है, हमारे ही स्वभाव ऐसे हुए हैं, तो सत्युग भी हमको ही बनाना है। और अभी अभी हमें क्या समझना है, हम इतने भाग्यशाली हैं, देखो ये अपना भारत लड़ाइयों में हिंदुस्तान पाकिस्तान हो गया ना, फिर हिंदुस्तान हुआ ना, तो अभी अंतिम समय पहुंच गया है, हम तो समझते हैं जास्ती कुछ परिवर्तन होने में जास्ती समय है नहीं, परंतु जितना भी समय हो, जितना जल्दी हम अपन स्वयं में परिवर्तन लाएंगे, उतना समय हम अंत के समय में बड़े शांति से अपना शरीर छोड़ सकेंगे। नहीं तो अंत में हाहाकार, ये सब जब देखो बाढ़ आ जाती है या एक अर्थक्वेक होती है, कितना सब बेचारे दरबदर होते। तो कम से कम अगर हम अपन को इन बातों को समझ करके स्वयं सावधानी से अच्छे कर्म हमारे किए होंगे, तो अंत में कुछ भी होता रहेगा तो हम डरेंगे नहीं। हमें उसमें पता नहीं अब क्या होगा, पता है उस अनुसार हमने ऐसे कर्म किए हैं जो हमें कोई ऐसा डर नहीं है, पता नहीं हमारा गर्भ जेल होगा या क्या होगा, क्योंकि जेल तो अभी होना नहीं है, अभी तो ये कलयुग बदल के सत्युग आने वाला है। इसलिए ये सारी नॉलेज भी जब अंत का समय आता है तो भगवान के महावाक्यों के अनुसार मैं गुप्त रूप में आकर के बच्चों को शिक्षा देता हूँ। तो बाप का तो रूप सदा गुप्त है, वास्तव में आत्मा भी तो गुप्त है, दिखाई नहीं पड़ती है, परंतु इतना है जो ये बात सब जानते हैं कि आत्मा शरीर में है तो शरीर काम करता है। तो हम जब अपनी आत्मा को जानते हैं और आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्म कराती है, और अब ड्रामा अनुसार हमें बाप ने ये सारी नॉलेज दे दी है, तो क्यों नहीं हम इस नॉलेज को यथारथ रीति से अपने जीवन में धारण कर स्वयं के जीवन के अंदर ऐसा कर्म करें श्रेष्ठ, और अपना स्वभाव ऐसा बना लें, चलो कोई भी कुछ करता है हमें अच्छा नहीं लगता है, ये तो मुझे नॉलेज है कि उसका स्वभाव ऐसा है, ठीक है उसे उसको मुझे समझाना है तो हम प्रेम से भी तो समझा सकते हैं, अच्छा नहीं लगता है तो आवाज ऐसा निकलता है, पर अब मुझे नॉलेज है, समझ है, तो मैं तो ऐसा बुरा शब्द ना बोलूं। तो अपने को ही सावधान करके अगर मैं ऐसा करूंगी, हम तो अभी ये कहते हैं जैसे कर्म हम करेंगे हमको देख के और करेंगे, भले हम कहेंगे हमारे पर थोड़ी सब बैठ है, हर एक तो अपना ही करता है, कभी ऐसा भी जवाब देते हैं, परंतु हम समझे भगवान ने हमें ये नॉलेज दी है, हमने माना है कि भगवान अभी अपना कार्य करा रहे हैं और भगवान ने हमें निमित्त बनाया है, तो अभी हम निमित्त बनकर अपने बाप को प्रत्यक्ष करना ये हम बच्चों का फर्ज है। इसलिए हम अपने को यथारथ रूप से भगवान का बच्चा समझ भगवान की शिक्षाओं को जितना हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हमें इस जीवन के लिए भी फायदा है और हमारे से दूसरों को फायदा मिलेगा, तो उसकी खुशी मुझे भी तो होगी, खुशी तो हर एक चाहता है। स्वयं को स्वयं शिक्षा देकर बातों को स्वीकार करने के लिए स्वयं ही स्वयं को तैयार करें। ओम शांति। देखो कितनी सहज नॉलेज है ना, सहज लगती है क्या मुश्किल, कितना सहज है समझना, ये तो आप भी समझा सकते हो। और भाग्यशाली हम जो हमें भगवान का पता चला है और इस सरल रीति से हमको समझानी मिली। और कम से कम हमारे बच्चे वो तो हमारे से सीखेंगे।
तो दादी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम संत की बुद्धि रूपी झोली भरी
अभी धन्यवाद की क्या बात है। ये तो हम बाबा ने जो नाले दिए आपस में आदान प्रदान करना, ये तो हम लोग का फर्ज है।
आशीर्वाद
कर्म है ना हमारा तो हमें अपना कर्म तो करना है ना। जीवन में कर्म इंद्रियां हैं मुख बोलने के लिए, तो जो नॉलेज मिली है वो हम सुनाते हैं।
तो दादी आपकी आशीर्वाद
और आप स्वीकार करते हैं तो हमें खुशी है।
आपकी आशीर्वाद रूपी बोली से हमने बुद्धि रूपी झोली भरी, अब टोली से मुख मीठा करेंगे तो अभी सभी को दादी टोली देंगे, उससे पहले दो मिनट साइलेंस में बैठें।